आरती जो बनते हैं वो देह को याद करते हैं, देह को याद करने के कारण देह अभिमानी राक्षसी ब्राह्मण कहे जाते हैं। राक्षसी ब्राह्मण जैसे कुंभकर्ण मेघनाथ है और रावण, ब्राह्मण तो थे, बड़े ज्ञानी थे, वो भी ब्रह्मा की औलाद थी, लेकिन ज्ञान के सात्विक रूप को धारण नहीं कर सकते थे। उनकी करनी अच्छी नहीं थी, ज्ञान का सुनना और सुनाना तो सभी ब्राह्मण कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना अलग बात हो जाती है। जो ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान को धारण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है। और आतताई ब्राह्मणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मा के तन में भले मां के रूप में परमात्मा शिव ने पाठ बजाया, लेकिन जब तक साकार रूप में रहा ये दो तरह के ब्राह्मण तो बने, लेकिन मम्मा और बाबा ने उन ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी। बल वो ब्राह्मण ब्रह्मा की गोदी में पलते रहे। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बाबा की वाणी पर ध्यान नहीं देते, जो ब्रह्मा मुख कमल से निकली है। ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई वाणी आदेश देती है, तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, तुम सिर्फ अम्मा के बच्चे नहीं हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। लेकिन जैसे कि उनको प्रजापिता नाम से ही एलर्जी है, बाप का नाम ही नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि बाप जो है वो सख्त स्वभाव का होता है और मां लूज स्वभाव की होती है। जो आतताई बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी मां अपनी गोद से बाहर नहीं रखना चाहती। और बाप ऐसे बच्चों को झड़क के अलग कर देता है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पलते हैं, ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में ऐसे कीड़े मकोड़े तिल मिलाकर खलास हो जाते हैं। यहां तो स्थूल रूप में मरने और जिंदा रहने की बात नहीं है, यहां तो है परम पिता परमात्मा शिव की वाणी पर निश्चय बुद्धि, माना जीते हैं, और अनिश्चय बुद्धि माना मरते हैं। क्योंकि यहां तो नियम है मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। अगर हर मुरली में जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं उन ज्ञान के पॉइंट्स पर मन चिंतन मंथन न चले, उनसे प्यार नहीं हो, तो उसको नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा से प्यार है। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु तो निराकार है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो पराय तन में आता है, चाहे वो पराया तन मुकर्रर रथ हो अथवा टेम्परेरी रथ हो। चलो ब्रह्मा के तन में टेम्परेरी रूप में आया, लेकिन जो ज्ञान की वाणी सुनाई, मुरली सुनाई, उस मुरली में बेसिक नॉलेज तो भरी हुई है ना, बेसिक नॉलेज से ही एडवांस नॉलेज निकलती है। ऐसे थोड़ी कहा जाता कि प्राइमरी स्कूल में जो काखागा एबीसीडी पढ़ाई गई वो ऊंची क्लास में जाकर खत्म हो जाती है, नहीं। प्राइमरी स्कूल में तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के जो दोहे और कवित्व रटाए जाते हैं, वही कवित्व और चौपाइयां ऊंची क्लास में जाकर बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उनके अर्थ गहरे हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया हुआ सब खारिज कर दिया जाता है, नहीं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई हुई बेसिक नॉलेज रहती है, लेकिन उसके गुह्यार्थ बदलते जाते हैं और गहरे हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख कमल से जो बेसिक नॉलेज है मुरलियों के रूप में परमात्मा ने सुनाई, उनके लिए खुद ही मुरली में बोल दिया है, बोला है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं था। जब तक ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई गई उसको अमृत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है सागर मंथन हुआ, और जब मंथन हुआ तो देवताओं असुरों दोनों ने मंथन किया, और मंथन करते समय जो रस्सी बनाई गई वो सर्प की रस्सी बनाई गई, वासु की नाम, उसके मुख के ओर राक्षसों ने पकड़ा और पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़ा। माना देवताई आत्माएं जो होती है वो मुरली को फॉलो करती है, पूंछ पकड़ती, वो मुख को नहीं पकड़ती परमात्मा का। परमात्मा के जो भी महावाक्य हैं उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा किया जा सकता। परमात्मा के वाक्य पत्थर की लकीर है, आज नहीं तो कल सच्चे साबित हो जाएंगे। जो जो महावाक्य परमात्मा ने बोले हुए हैं अथवा ब्रह्मा की शोले के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा बुलवाए हुए हैं, वो सब सच्चे साबित होने वाले हैं। क्रास करने की कोई बात ही नहीं, जो मुरली में बोला ब्रह्मा के द्वारा वही बात पैरेलल में ब्रह्मा ने गुलजार दादी के द्वारा बोला। एक भी महावाक्य व्यक्तवाणी का ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को कट करता हो। नहीं तो दो आत्माएं जब वाणी चलाती है तो उनके महावाक्यों में कहीं न कहीं कोई न कोई क्रास जरूर हो जाता है। कोई भी दुनिया के दो आदमियों को ले लो, उनकी सुनाई हुई बातों में और दूसरे व्यक्ति की सुनाई हुई बातों में अंतर थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो बातें सुनाई, जो ज्ञान के पुंज दिए, जो भी पॉइंट्स आए और ब्रह्मा की सोलह गुलजार दादी के द्वारा जो कुछ भी बोला, उनमें कहीं भी क्रास नहीं देखने को मिलता। इसे साबित होता है कि ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जब प्रवेश करके बोलती है तो पूरा पूरा बाबा की याद में बोलती है, और बाबा कहते तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर 100% याद में है तो मैं 100% तुम्हारे साथ हूं। तो ब्रह्मा की वाणी में कहीं त्रुटि आने की सवाल पैदा ही नहीं होता। ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी बोला वो भी सत्य, और गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल ने जो कुछ भी बोला वो भी सत्य। इतना अंतर जरूर है कि सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख द्वारा जो सुनाया, सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है, तो जो कुछ भी सुनाता है वो ज्ञान की बातें सुनाता है, और ब्रह्मा की सोल सृष्टि का पहला देवता है। क्या परमात्मा नहीं है, क्या है? पहला देवता। तो जो जैसा होगा वैसी ही वाणी तो सुनाएगा, देवता होगा तो दिव्यता से भरी हुई वाणी सुनाएगा। पहला देवता है तो जरूर दिव्य गुणों से भरी पूरी वाणी चलाता है। देवता की सोल दिव्य गुणों से भरी पूरी वाणी नहीं चलाएगी तो और कौन चलाएगा? तो इतना अंतर जरूर है। गुलजार दादी के मुख से जो कुछ भी सुनाया गया, जिनमें दिव्य गुण नहीं है उनको वो पाणी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, और जो रुद्र के भगत, जो रुद्र के बच्चे हैं डायरेक्ट, उनको रुद्र ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्रास कहीं भी नहीं है। फिर ये मुखवंशावली ही सब क्यों नहीं बनते? मुखवंशावली कहां से बन जाते हैं? क्या जवाब आया? कुख माना देह। जिन्होंने देहदारियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, वाणी को प्रेफरेंस नहीं दिया, वो कुख मंसावली राक्षसी ब्राह्मण बन गई। परमात्मा शिव तो आकर के ज्ञान की वाणी चलाती है। ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माने सच्चाई की जानकारी, वो है पृथ्वी गॉड फादर। अंग्रेज लोग उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्या है सच्चाई को तो गॉड कहा जाता है, नहीं तो वो बिंदी है, वो तो शरीर धारण ही नहीं करता। तो जब भी सृष्टि पर आता है, जब ये सृष्टि झूठ की दुनिया बन जाती है, कैसा झूठ, 100% झूठी बन जाती है। तुलसीदास जी तो लिख दिया है, झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना। सब मनुष्य झूठे बन जाते हैं। मनसा से झूठे वाइब्रेशन चलाएंगे, वाचा से कुछ न कुछ झूठ जरूर बोलेंगे, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करेंगे वो भी झूठे कर्म करेंगे। तो जब ऐसी झूठ खंड की दुनिया बन जाती है तो परमपिता परमात्मा शिव को आकर के सत्य ज्ञान देना पड़ता है। और सत्य ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, सत्य की जानकारी झूठे मनुष्य नहीं दे सकते। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, जब से इब्राहिम आए इस धरती पर। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े धर्म पिता आए और उनको फॉलो करने वाली बड़ी बड़ी जनरेशन दुनिया में मौजूद है। क्राइस्ट के 100-150 करोड़ फॉलोअर हो गए। इब्राहिम और मोहम्मद के इससे भी ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस का वर्चस्व तो दुनिया में अभी 100-200 वर्षों से बढ़ा है। उससे पहले तो मुसलमानों का ही दुनिया में राज्य फैला हुआ था। क्योंकि मुसलमानों में यूनिटी बहुत थी, कोई भी मुसलमान हो काबा में उसकी बुद्धि रखी रहती है। दुनिया के कोई भी क्षेत्र में रहता हो, मक्का मदीना को जो रिगार्ड देगा वो दुनिया के किसी और देश के स्थान को रिगार्ड नहीं दे सकता। एक को मानते हैं, भले जानते नहीं है, नूर को मानते हैं। अल्लाह नूर है, उनकी कुरान में लिखा हुआ है वो सितारा है, से सितारा जगमगाता है, रोशनी देता है। वैसे अल्लाह भी सितारा है। तो उनकी एकाग्रता बनी रहती है एक रूप के ऊपर, इसलिए सारे विश्व में मुसलमानों ने राज्य किया, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। क्रिश्चियंस ने भी राज्य किया, लेकिन अंतिम 200 वर्षों में उनका बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब दुनिया बहुत झूठी हो जाती है तो दिखावे में ज्यादा विश्वास करती है, पॉम्पेड शो में ज्यादा विश्वास करती है। तो जब पॉम्पेड शो वाली दुनिया हो जाती है तब सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और सच्चाई बताता है। अज्ञान को झूठ कहा जाता है, ज्ञान को सत्य कहा जाता है। और लास्ट में जाकर के सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। गुप्त रूप में रहकर के जो दुनिया की श्रेष्ठते श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हर धर्म की चुनिंदा आत्माएं हैं, उनको चुनता है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अच्छी आत्माएं न हो, अच्छे और खराब तो हर जगह होते ही। नास्तिक धर्म है, को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ वो अपने अहंकार को ही सबसे आगे रखते हैं। उनको भी परमात्मा बहुत अच्छा काम दे देता है। क्या अच्छा काम देता है? कहते हैं विनाश भी कल्याणकारी है। ये काम सब कोई के करने का नहीं है, तो जो दुनिया का सबसे लास्ट का धर्म है नास्तिक धर्म, उस बच्चे को भी चुन करके झाड़ में अपने सबसे नजदीक बैठाया हुआ है, टेढ़ी सी जड़ है, टेढ़े स्वभाव संस्कार। कहते भी है मां बाप के कई बच्चे होते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत लाडला होता है, लेकिन दुनिया कहती है छोटा सो बहुत गोटा। तो एटमिक एनर्जी का निर्माण करते हैं, कब करते हैं? जब परमात्मा से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, उसी समय उन बच्चों का भी चुनाव कर लेते हैं। सूर्यवंशी बच्चों का भी चुनाव करते हैं, चंद्रवंशी का भी चुनाव करते हैं, इस्लाम वंशी बच्चों को भी दुनिया में से चुनाव करते हैं, बौद्धी और क्रिश्चियन को भी चुनाव करते हैं। माने दुनिया की हर धर्म की आत्माओं को चुनते, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, परमात्मा में विशेष लगन लगाने वाली आत्माएं हैं, उनको जीते और चुन करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे बनाते। चाहते तो यही है कि सब ब्रह्मा मुख वंशावली बने, लेकिन होता क्या है, जन्म जन्मांतर की रग पड़ी हुई है, वो रग जल्दी खत्म नहीं होती। ज्ञान और ज्ञान की बातें जितना भारत की परंपरा में की जाती है, इतना दूसरे धर्म की परंपरा में ज्ञान की गहराइयों में नहीं जाया जाता। पूरी कुरान देख लीजिए, उसमें सिर्फ जैसे मिलिट्री का कोई मार्शल डायरेक्शन देता है, ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं मिलिट्री को, ज्ञान की कोई बात ही नहीं। ज्ञान की बातों के हिसाब से मुसलमानों का कहना है अल्लाह मियां ने पृथ्वी बनाई, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया। अब कैसे बनाया तो कुछ पता नहीं है, क्या बोलते हो अल्लाह मियां ने कैसे बनाया? अल्लाह मियां के ऊपर उंगली उठाते हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही बाइबल में भी दुनिया भर की कथा कहानियां इकट्ठी को ही पढ़ी, और उन कथा कहानियों में चमत्कार ही चमत्कार दिखाया गया। ऐसे भारत के ग्रंथों में भी चमत्कार दिखाया है, लेकिन जो भी दिखाया है वो पश्चिमी देश के जो धर्म आए हैं उनसे प्रभावित होकर के दिखाया गया। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है कि शुरू शुरुआत में शास्त्र भी सच्चे थे, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो और तमो होती। तो शास्त्र भी द्वापर युग के आदि में जब बनाए गए थे तो उनमें सच्चाई थी। सच्चाई का कारण भी बता दिया। शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है भारतवासियों का, श्रीमद् भगवत गीता। उस श्रीमद् भगवत गीता में साकार का नाम नहीं था कहीं भी। बाद में उस गीता में मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो कृष्ण के उपासक थे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच डाल दिया, बस हो गया सत्य नाम। अगर साकार का नाम न डाला जाता तो दुनिया के सभी धर्म के लोग गीता को अपनी पुस्तक के रूप में मानते और गीता ज्ञान को बहुत तरजीह देते। लेकिन उसमें साकार का नाम डाल दिया तो दूसरे धर्म वालों ने उसको श्रेष्ठ नजर से देखना बंद कर दिया, क्योंकि निराकार को तो सब मानते हैं, चाहे स्वधर्मी हो चाहे विधर्मी हो, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, लेकिन साकार को सिर्फ भारतवासी मानते हैं, सभी धर्म के लोग नहीं मानते। तो जो आदि में द्वापर के आदि में जब शास्त्रों की रचना हुई थी तो गीता सात्विक थी, सत्व प्रधान थी। बाद में जब से कृष्ण का नाम ऐड किया गया तो हिंदुओं के शास्त्र भी सब झूठे होने लगे। जिसने जैसा चाहा वैसा उनका अर्थ करना शुरू कर दिया, व्याख्याएं करना शुरू कर दी। एक ही गीता उसकी 108 टीकाएं हो गई, उससे भी ज्यादा टीकाएं हो गई। शंकराचार्य की गीता, माध्वाचार्य की गीता, टैगोर गीता, पता नहीं कितनी कितनी व्याख्याएं हो गई। और एक व्याख्या दूसरे की व्याख्या से बिल्कुल काटती है। शंकराचार्य की गीता साबित करती है परमात्मा सर्वव्यापी है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और माध्वाचार्य की गीता साबित करती है आत्माएं अनेक हैं और सब अलग अलग हैं और परमात्मा उनसे तुरीय है, अलग है। तो एक दूसरे को मूल में ही काटती है। फिर सच्चाई कौन सी है? मनुष्य को सच्चाई का कैसे पता चले? सब भ्रमित हो गए और भ्रमित होते होते भारतवासियों का ये हाल हो जाता है कि वो विदेशियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। यहां की शिक्षा में ऐसी बू समा जाती है कि अंग्रेज लोग जो शिक्षा दे करके गए हैं उसी शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अंग्रेज लोगों ने सिखाया खूब पढ़ो लिखो और नौकरी करो, तो नौकरों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। अब नौकर तो नौकर, चाहे गवर्नमेंट की नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, चाहे ऊंची नौकरी हो चाहे छोटी नौकरी हो, आखिर किसी के नीचे काम करेंगे ना, अंडर में रह करके काम करेंगे ना। तो ये हुई आधीनता की पढ़ाई। बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप आकर के हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके लिए बोलते हैं, बच्चे मैं तुमको आधीन बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं और एक जन्म का नहीं बनाता हूं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं राजयोग की, जिस राजयोग से तुम जन्म जन्मांतर के लिए राजा बनती हो, कोई के आधीन नहीं रहते। सब तुम्हारे आधीन रहेंगे लेकिन तुम किसके आधीन रहने वाले नहीं। ऐसी पढ़ाई मैं पढ़ा करके जाता हूं। तो देखो विदेशी शिक्षा क्या बनाती है और भगवान बाप भारतवासियों को आकर के क्या बनाते हैं। आप कहेंगे आपने भारतवासी क्यों कहा, भगवान तो सब धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है, तो दूसरे धर्म की दूसरे देशों की जो आत्माएं चुन करके ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं वो श्रेष्ठ कैसे हुए। श्रेष्ठ तो कहेंगे जो डायरेक्ट ऊपर से आती है आत्माएं द्वापर युग से, जो कभी देवता नहीं बनती, सत्युग त्रेता में जन्म नहीं लेती, उनके मुकाबले तो वो आत्मा श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जो देवताएं थे वही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। देवताएं हिंदू कहे गए द्वापर से और हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम होती गई और विदेशियों और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती गई। भारतवासियों की जनसंख्या इसलिए कम हुई कि वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई। क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं आते हैं वो देवताओं की पवित्रता को नहीं पहचानते, वो व्यभिचार फैलाने वाले होते हैं। व्यभिचार माने सारी दुनिया को वैश्यालय बनाने वाले होते हैं। और भगवान ने आकर के जो दुनिया स्थापन की थी वो शिवालय बनाई थी। उस शिवालय की दुनिया में राधा की आंख कृष्ण में ही डूबती थी और किसी में नहीं डूबती, और कृष्ण की आंख राधा में ही डूबती थी। दृष्टि मात्र भी व्यभिचार नहीं था, तो कर्म इंद्रियों से व्यभिचार होना तो बहुत दूर की बात। और सतयुग त्रेता दो युगों में इतनी अव्यभिचारी शिवालय की दुनिया थी। जब से ये विधर्मी आए इन्होंने संसार को व्यभिचार में ढकेल दिया, वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया। दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से और कर्म इंद्रियों से भी व्यभिचार संसार में फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि इन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ानी थी। सतयुग त्रेता में जनरेशन जास्ती नहीं बढ़ती, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा होती, इसलिए देवहान आता ही नहीं। द्वापर युग में भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की उत्पत्ति होना शुरू हुई, क्योंकि इन धर्म पिताओं ने आकर के द्वैतवाद फैला दिया। दो दो प्रकार की धारणाएं सुनाना आरंभ कर दी, दो दो प्रकार के धर्म बना दिए, दो दो प्रकार की भाषाएं फैल गई और दो दो प्रकार के दुनिया में राजाएं हो गए और दो दो प्रकार के धर्म खंड हो गए, दो से चार, चार से आठ बढ़ते ही चले गए। जैसे जैसे विचार फैलने से जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे दुनिया में धर्मखंड भी बढ़ती चली गई। और सभी धर्म पहले सतो प्रधान, फिर बाद में कलयुग के अंत में आकर के सब तनु प्रधान बनने ही होते हैं। तो ऐसे ही हुआ, इब्राहिम बुद्ध क्रांतिकारी जो धर्म पिताएं थे उन्होंने आकर के देवताओं को कन्वर्ट किया, हिंदू से अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके उनको ले जाकर के आधीन बनाया, आधीन बना करके उनको उनकी आत्मा को जैसे मार दिया। आधीन जो होता है वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता, तो जो भी आत्मा दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई, भगवान बाप तो जानता है कि ये देव आत्माएं थी, तो जब नई सृष्टि आकर के रचता है तो उन आत्माओं को उठाता है, उठाता तो है लेकिन जो दूसरे धर्म से आई हुई आत्माएं हैं वो पहले सुधरेगी या वो आत्माएं पहले सुधरेगी जो आदि से लेकर के सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक अपने धर्म की पक्की रहती है, कौन सुधरेगी? वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सतयुग के सूर्यवंशी और त्रेता के चंद्रवंशी, वो आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक दूसरे धर्म में जीते जी कन्वर्ट नहीं होती। जो अपने धर्म का पक्का होगा वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, और जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा सुखी रहेगा, दुख नहीं भोगेगा। इसलिए मनुष्यों की संस्कृत की गीता में भी बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म जो है वो भय पैदा करने वाला है, दुख देने वाला है। तो जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही वो ही माउंट आबू में आकर के ब्राह्मण बनी है, और जो अपने धर्म के पक्के थे, एकदम पक्के थे, वो यज्ञ के आदि में ही ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के साथ यज्ञ छोड़ करके चली गई। क्यों चले गए उसका भी कारण बताया, मुरली में ही कारण बता दिया, शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। शुरुआत में ओम ओम की ध्वनि लगाई जाती थी, जैसे दुनिया में कीर्तन करते हैं, भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं ना, और पुरानी भक्ति मार्ग की गीता के ही अर्थ बैठ करके सुनाते थे, जैसे दुनिया में सुनाए जाते, तो सब भक्ति मार्ग के ही क्रियाकलाप चल रहे। जैसे भक्ति मार्ग में अच्छे अच्छे भक्तों को साक्षात्कार होती रहती, ऐसे ही सिंध हैदराबाद में भी जो भी सत्संग में आते थे वो साक्षात्कार करते थे और रास रचते रहते। रास करना, प्रसन्न होना और साक्षात्कार करना, अल्पकाल का उमंग उत्साह तो बढ़ता ही है, ज्ञान नहीं। जब ज्ञान की रोशनी नहीं है तो सूर्यवंशी बच्चे कैसे टिकेंगे? जो बुद्धिवादी होती है उन्हें तो बुद्धि का भोजन चाहिए। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? है? परमपिता परमात्मा सेवा है बुद्धिमानों की बुद्धि। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जो धर्म पिताएं हैं उनको बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो भी बुद्धिमानों की बुद्धि होते तो जब वो आए थे इस सृष्टि पर तो सृष्टि को नरक से स्वर्ग बना देते। लेकिन क्या किया? और ही उनके जाने के बाद ये सृष्टि नरक बनती गई। तो उनकी बुद्धि का दिवाला मारा गया, यही कहा जाएगा ना। एक शिव परमात्मा ही है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, और उस बुद्धिमानों की बुद्धि के जो डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वो है सूर्यवंशी बच्चे। इसलिए संस्कृत की गीता में लिखा हुआ है कि जब मैं आता हूं तो सबसे पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य से सूर्यवंशी बच्चे पैदा होंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो यज्ञ के आदि में ही राम वाली आत्मा के साथ ही चले गए। थोड़ा आगे पीछे फिर कौन बचे? चंद्रवंशी बचे, इस्लाम वंशी बचे, बौद्धि वंशी बचे। सभी धर्मों की आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक यज्ञ में आती रही। हर धर्म की आत्माएं आई और परमात्मा बाप से अपना अपना वर्षा ज्ञान का लेती रही। लेकिन मुखिया कौन था यज्ञ? मुखिया ज्ञान सूर्य था या ज्ञान चंद्रमा था? ज्ञान चंद्रमा मुखिया। और सरस्वती उनकी सहयोगिनी शक्ति। तो यथा राजा तथा प्रजा। चंद्रमा के प्रकाश में अच्छे भी पलते हैं और कीड़े मकोड़े भी बड़े आराम से रहते हैं। ऐसा ही हुआ। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी वो भी यज्ञ में पलती रही, और जो चंद्रवंशी आत्माएं थी किसी को दुख देने की उनमें प्रवृत्ति नहीं थी वो भी पलती रही। अभी भी 10-12% ऐसी आत्माएं हैं चंद्रवंशी, प्योर चंद्रवंशी, पूरा ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, जो अभी भी पल रही है। वो इतनी सहन शक्ति वाली है कि किसी का अपोजिशन नहीं करेगी। कोई भी दीदी दादी दादाएं हो कितना भी अत्याचार करें वो ब्रह्मा के नाम को बदनाम करने वाली नहीं होगी। यज्ञ छोड़ करके नहीं भागेगी। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है कि अंत में मक्खियों की रानी निकलेगी और उनके पीछे पीछे सारा ही झुंड जाएगा। क्योंकि जिनमें सहन शक्ति जास्ती होती है उनमें प्योरिटी भी जास्ती होती है। जिसमें सहन शक्ति नहीं होती है वो फटाक से तलाक दे मारती है। एक तलाक देगी, दूसरा करेगी, दूसरा तलाक देगी, तीसरा करेगी, चौथा करेगी। विदेशों में देखो जाके तलाक ही तलाक, क्योंकि सहन शक्ति दूसरे धर्मों में नहीं है, चंद्रवंशियों में सहन शक्ति है। किसकी औलाद? चंद्रमा की। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने कितना सहन किया, बच्चों ने हार्ट फेल कर लिया और वो भी सहन कर लिया। चाहते तो बच्चों का अपोजिशन भी कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन नहीं किया। तो जब ब्रह्मा ही बाप, ब्रह्मा बाप ही जिनका सहन शक्ति का भरा पूरा 100% हो, तो बच्चे कैसे होंगे? वो भी सहन शक्ति के आधार, वो आत्मा अभी भी यज्ञ के अंदर है, जो ग्रुप विजयमाला का दाना बनती है। विजयमाला माना विकारों पर विजय पाने वाली, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में, कहां 10-12% विजयी बनने वाली देवात्मा है, और कहां ढेर सारा हुजूम राक्षसी आत्माओं का भरा पड़ा है। ब्रह्मा बाबा जीवित नहीं रहे, मम्मा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया, तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के अंदर आपाधापी मच गई। जैसे द्वापर शुरू होता है तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। इस्लामी आए, उन्होंने अरब देश में अपनी राजधानी जमा दी, अपना प्रोविंस अलग कर दिया। हिंदुओं का राज्य अलग हो गया, भारतवर्ष, उनका अरब देश। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म खंड, यूरोपीय धर्म खंड अलग हो गया, उनका राज्य अलग हो गया, उनकी भाषा अलग हो गई, उनका धर्म अलग हो गया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध आए, आए तो भारतवर्ष में, लेकिन उनके मां बाप ने उनको देश निकाला दे दिया, क्योंकि मनमाने तरीके से अपनी अपनी बातें सुना रहे थे। बातें तो उनकी उस समय सच्ची थी, लेकिन भारतवासी जो राजाएं थे वो तामसी थे, सहन नहीं किया। दूसरे देशों में जाकर के उन्होंने अपने धर्म को फैलाया, चीन, जापान आदि में, और बौद्ध धर्मखंड भी स्थापन हो गया। तो जैसे द्वापर युग आते आते दूसरे दूसरे धर्मखंड स्थापन हो गए, अपना अपना प्रोविंस दुनिया में अलग अलग स्थापन हो गया, ऐसे ही मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में अलग 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 जोनल ऑफिस इंचार्जेस बनाएंगे, और सारे हिंदुस्तान को जोनल इंचार्जेस को सौंप दिया गया अलग अलग तरीके से। गुजरात का जोन इंचार्ज अमुक, यूपी का जोन इंचार्ज अमुक, कर्नाटक का जोन इंचार्ज अमुक, तमिलनाडु का जोन इंचार्ज अमुक, बंगाल का जोन इंचार्ज अमुक, अलग अलग राज्य हो गए। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में चली गई। कब से हुआ ये? बाबा ने जब से शरीर छोड़ा 69 में, उसके बाद से ही तुरंत ये जोनल इंचार्ज बनाएंगे। ये बंटवारा कौन करता है? भारतवासी आत्माएं चंद्रवंशी आत्माओं ने बंटवारा किया या दूसरे धर्म के जो कन्वर्ट हुई आत्माएं ब्राह्मण आकर के बनी थी उन्होंने ये बंटवारा किया? वही ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान पर विशेष ध्यान नहीं देती थी, ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को ध्यान नहीं दे रही थी, देहधारियों को विशेष महत्व दे रही थी, देहधारियों की अलग अलग ग्रुप बना रही थी, उन्होंने ये अलगाववाद पैदा कर दिया। क्योंकि 63 जन्मों के उनके अंदर अलगाववाद के संस्कार भरे हुए, वो संस्कार एकदम समाप्त नहीं हो सकते। और जो चंद्रवंशी आत्माएं थी वो इस राज को नहीं जान सकी और वो आराम से उनके अधीन हो गई। जो विदर्भी आत्माएं है उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया। क्या बातें बनाना शुरू किया? बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, हम पहले भी बाबा के जमाने में बाबा से बहुत मान मर्तबा लेते रहे। बाबा जितना मान मर्तबा हमको देते थे उतना और किसी को नहीं देते थे, लेकिन बाबा ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया। वाणी अव्यक्त वाणी जो चली उसमें भी बता दिया इस यज्ञ की देखरेख, सब सेंटर्स की देखरेख मनमोहिनी दीदी करेगी। और जो ऑफिस में हेड ऑफिस माउंट आबू में जो लिखा पढ़ी का कार्य चल रहा है, जो यीशु दीदी दादी संभालती थी उसमें कुमार का सहयोगी मिले। इसका मतलब हेड ऑफिस में हेड क्लर्क यीशु और असिस्टेंट क्लर्क किसको बनाया? कुमार का। लेकिन हिंदुस्तान में अभी कलयुग में क्या हो रहा है, कोई भी ऑफिस में चले जाओ जो ऑफिसर है वो सिर्फ कुर्सी पर बैठता है और सारी सत्ता क्लर्कों के हाथ में होती है। ये लाल फीताशाही का जमाना चलता है, ऐसे ही यज्ञ में हुआ। जिसको क्लर्क बनाया गया असिस्टेंट, उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। और जिनको मुखिया बनाया गया था वो प्राण पखेरु छोड़ करके चले गए। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो मम्मा बाबा के जाने के बाद उसी तरह हावी हो जाती है जैसे कि विदेशी विधर्मी 2500 वर्ष से लेकर के अब तक भारतवास के ऊपर हावी होकर है, अभी भी हावी। पहले भी वो आत्माएं हावी थी, मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक इंडिया के ऊपर राज किया और अभी तो पूरा ही कर्जदार बना दिया। भारत के ऊपर कितना जबरदस्त कर्ज चढ़ा हुआ है विदेशों का, पूरा अधीन हुआ पड़ा है। ऐसे समय में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे मैं तुमको अधीनता से निकालने के लिए आया हूं, तुमको राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं, अब अधीनता को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति के आधार पर प्रकृति भी 24 घंटे तुम्हारी दासी बनकर के रहती। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था, हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे और 36 प्रकार के जो भोग है वो भी तुमको बनाने खाने नहीं पड़ते थे, प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती। एरोप्लेन के कारखाने नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी थे जिन पक्षियों पर बैठ करके तुम आकाश में उड़ान भरते थे। तुम्हारी अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने उड़न खटोले थे, उनको इशारा करते थे, आंख का इशारा पकड़ते थे, इधर तो इधर उड़े, इधर तो इधर उड़े, ऊपर तो ऊपर गए, नीचे तो नीचे आए। हैं? बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने देखते तो सामने दौड़ते
हैं।
नहीं नहीं उनकी आंखें ऐसे जैसे कौए की आंख चारों तरफ ऐसे अपने मालिक की तरफ आंख रहती। तो किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी प्रकृति सारी कुदरत तुम्हारी मुट्ठी में थी। अभी अभी प्रकृति के 5 तत्व इन विदेशियों की मुट्ठी में आ चुके। वो 5 तत्वों को कंट्रोल की हुई पावर कुछ तुमने भी उनसे सीख ली है, नकल कर ली है। क्योंकि तुम तो हो ही राम की सेना, पहले मंदिर लायक देवता थे, अभी नकल करते करते बंदर बन गए। तो नकल करने में तुम बहुत होशियार हो, वाय देवता को उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया और हमने कंट्रोल करना सीख लिया। एक बटन दबाया और पंखा घूमकर। अग्नि देवता एक बटन दबाते हैं और हीटर जलने लगता है। अभी तो अग्नि देवता ऐसा स्वरूप धारण कर चुका है कि एक बटन दबाएं और धूम धाम एटम बम फटने लग पड़े। चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, जल देवता हो, सब कंट्रोल कर लिए है विदेशों। लेकिन जो पूरी प्रकृति है संघातमयी, वो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति को कंट्रोल करना मैं तुमको सिखाता हूं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश उन्होंने तो अल्पकाल के लिए कंट्रोल किए और मैं तुमको 2500 वर्ष तक के लिए कंट्रोल करना सिखाता हूं। 2500 वर्ष तक प्रकृति तुम्हारा कोई अपोजिशन नहीं करेगी, तुम प्रकृति पति कहे जाओगे। अभी प्रकृति जब चाहे तब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है,